हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। आज मोक्षदा एकादशी का दिवस है, गीता जयंती। हाँ, 9 दिसंबर इस साल का, 2008 का, तो बहुत ही पवित्र दिन है आज। इसलिए मैं आपको बार बार उत्साह से बोलने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। मोक्षदा यानी कि आज की एकादशी का व्रत जो करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जो है बहुत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। जैसे बहुत सारे व्रत बताए गए हैं, शुक्रवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, बहुत सारे व्रत बताए गए अलग अलग देवताओं के लिए। लेकिन वैष्णव जन जो होते हैं वो केवल एक व्रत करते हैं, वो है एकादशी व्रत। और वो जीवन भर के लिए होता है, ऐसा नहीं कि 16 शुक्रवार हो गए तो व्रत खत्म हो गया। जीवन भर का व्रत होता है वो। और इस व्रत से राधा रानी तो राधा रानी को गोपियों ने पूछा था कि श्री कृष्ण भगवान को वरने के लिए, उनका मन प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका विस्तार में वर्णन आया है कि राधा रानी ने स्वयं अपने श्री मुख से गोपियों को एकादशी व्रत का महात्म्य वर्णन किया है। और जो 26 एकादशियाँ आती हैं 52 हफ्तों में, वो 26 एकादशियों का पूर्ण उन्होंने अलग अलग विस्तार से वर्णन दिया है कि कौन सी एकादशी का व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है और कैसे हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण एकादशी है मोक्षदा एकादशी। इसी दिन आप जानते हैं कि कौरव पांडवों का बीच में जो विवाद था वो कुछ सेटल नहीं हुआ किसी भी तरफ, यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर चले गए, एम्बेसडर, राजदूत बनकर कौरवों के पास चले गए और पूरे विश्व का साम्राज्य चलाने के योग्य होने पर भी उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे। आप सोच सकते हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य हैं, पूरे विश्व को धर्म के रास्ते पर जाने की शक्ति रखते हैं और सब सद्गुणों से संपन्न हैं, ऐसे वीर श्रेष्ठ नरवर पांडवों के लिए उन्होंने केवल कॉम्प्रोमाइज के रूप में 5 गांव मांगे, 5 भाइयों के लिए 1-1 गांव। तो दुर्योधन इतना घमंडी और इतना द्वेषी और इतना अहंकारी था, उसने कहा 5 गांव तो क्या, सुई की नोक पर जितनी भूमि आ सकती है उतनी भूमि पर भी 5 भाइयों को मिलकर नहीं दूंगा। ऐसा उसने भयंकर कठोर बात की। तो फिर भगवान ने हर प्रकार से कोशिश की थी युद्ध न हो, फिर भी जब ऐसी बात हुई तो युद्ध होने की ठहर गई। युद्ध आरंभ होने के पहले सभी विश्व के जितने राज्य थे, जितने भी देश थे, वो सारे देश की सेनाएं जो है 2 ग्रुप में विभाजित हो गई, किसी ने कौरवों का पक्ष लिया, किसी ने पांडवों का पक्ष लिया। अलग अलग राजनीति के समीकरणों के अनुसार अपने अपने पक्ष को लोगों ने चुन लिया, लेकिन विश्व में ऐसा कोई देश नहीं था जो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं था, या तो वो कौरवों के पक्ष में या तो पांडवों के पक्ष में। बीच में राजनीति का ऐसा प्रभाव रहा कि कुछ लोग यहाँ जाने वाले थे उनको वहाँ खींचा गया। मामा जो शल्य मामा थे, पांडवों के मामा थे वो, तो पांडवों के पक्ष में आने के लिए आ रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने उनको बीच में फितूर कर लिया। इस तरह से राजनीति के अनेक दांव पेच खेले गए और लास्ट मोमेंट पर आज के दिन युद्ध आरंभ होने का तय हुआ। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पे तय की गई, जिसको कहते हैं धर्म क्षेत्र। आज वो धर्म क्षेत्र है ही, क्योंकि वहां पर महाभारत का युद्ध खेला गया था, लेकिन वो पहले से ही पावन भूमि थी। इसलिए धृतराष्ट्र के मन में चिंता थी कि मेरे पुत्र जो हैं वो पापी हैं, हाँ, उनका क्या होगा, इस धर्म के क्षेत्र पे युद्ध हो रहा है, धर्म का पालन करने वाले जो पांडव हैं, मेरे भाइयों के पुत्र हैं, वो तो उनकी बाजी जोरदार है इसके अंदर, क्योंकि धर्म का पक्ष में जीते हैं वो जीवन को। चिंतित थे वो, लेकिन फिर भी युद्ध आरंभ होने की ठहरी, दोनों पक्ष अपने अपने सेनाओं को लेकर रणभूमि में उतरे, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि मैं जाकर देखता हूँ कि युद्ध की अभिलाषा से, राज्य प्राप्त करने के हेतु, अधिकार प्राप्त करने के हेतु कौन कौन आए हैं, मुझे देखना है। कई बार कुछ कुछ जानकारी थी उनको, लेकिन उनको आंखों से देखना था कि क्या स्थिति है, मुझे किस किस के साथ युद्ध खेलना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को विनती की कि मेरे इस रथ को, जिसमें आप सारथी के रूप में विराजमान हैं, उसको लेकर दोनों रथों के बीच में आप उपस्थित करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आए हैं। जैसे ही भगवान उनको ले जाते हैं तो पांडवों को बड़ा आश्चर्य होता है, युधिष्ठिर को, भीमसेन को, ये क्या हो रहा है, अरे युद्ध करने के बीच में ये कहाँ जा रहे हैं, क्या वो कौरवों से अभी माफ़ी मांगेंगे, बोलेंगे युद्ध नहीं करना है, क्या वो राज्य को ऐसे ही युद्ध के बिना ले लेंगे कि आप ले लो, आप राजा बनो, क्या भीष्मदेव से शरणागति स्वीकार करेंगे, क्या गुरु द्रोण से शरणागति स्वीकार करेंगे, ये सब प्रश्न उठ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों जा रहे हैं वो। तो जाकर वो भीष्मदेव को, गुरु द्रोण को वंदन करते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज भी जाते हैं कुछ देर पहले। एनीवेज, तो अचानक वो दिखाई पड़ता है दूर से, अभी देखो करोड़ों की सेना उपलब्ध है, बीच में वो खड़े हैं, नजर नहीं आ रहा क्या एग्जैक्टली हो रहा है, लेकिन मालूम पड़ता है कि अर्जुन दुखी हो गए हैं और शस्त्र को नीचे रख दिया उन्होंने, भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं, सबको चिंता होती क्या हो रहा है। तो उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, कितने सारे लोग खड़े हैं युद्ध के लिए, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरे पितामह हैं, कोई मेरे गुरु हैं, कोई मेरे मामा हैं, कोई काका है, कोई भाई है, कोई ससुर है, कोई हर प्रकार के लोग सब खड़े हैं, लेकिन सब ये फैमिली अफेयर है, ये घर का युद्ध है, घर के ही लोग, एक घर के लोग दो भाग में विभाजित होकर एक दूसरे को मारने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध में खड़े हैं, मेरे कैसा युद्ध है ये युद्ध को जीत के मैं क्या करूँगा, इन सबको मारना पड़ेगा, पितामह को मारना पड़ेगा, जिनकी गोद खेला हूँ मैं, जिनके कद्दों पर, जिनके आँखों पर, जिनके हाथों पर मैंने बचपन गुजारा है, उनके हाथों से मैंने प्रसाद पाया है, जिन गुरु से मैंने बाण चलाना सीखा है, धनुर्विद्या सीखी है, इन पर बाण चलाना पड़ेगा, इनका वध करना पड़ेगा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, टू मच, दिस इज टू मच फॉर मी, तो अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं जंगल में जाऊँगा, भिक्षा मांगूंगा, लेकिन मुझे वो राज्य नहीं चाहिए जो मेरे आप्त संबंधियों को खून को जमीन पर गिराने के बाद मुझे प्राप्त हो, मेरे सभी सगे संबंधियों को शीश काट कर जब जमीन पर गिरेंगे तब मुझे राज सिंहासन प्राप्त होगा, ये राज सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, इसके बदले में मैं भिक्षुक बनूंगा। तो राजा योग्य के योग्य है, वो कह रहा है कि मैं जंगल में रहकर संन्यास लेकर भिक्षा मांग कर माधुकरी करके मेरा जीवन चलाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, अनेक सगे संबंधियों के पतियों को विधवा करके, हाँ पतियों को मारकर पत्नियों विधवा हो जाएंगी, दुख भरा जीवन जिएंगी रक्षण के बिना, ये सबका मैं दोषी रहूँगा उसके लिए, तो और ये राज्य मैं प्राप्त करूँगा तो किसके लिए जीऊँगा, जो सगे संबंधियों के साथ में रहकर राज्य का आनंद लूँगा, लेकिन सगे संबंधी रहेंगे नहीं तो किसके साथ मैं राज्य आनंद करूँगा। इस प्रकार से मोह से ग्रस्त होकर अर्जुन जो है शस्त्र नीचे रख देते हैं। तब भगवान कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, अरे तुम आर्य हो, तुम्हें जीवन की प्रगतिशील मूल्यों का ज्ञान है, फिर भी ऐसा अज्ञान पर मोह से भरी बातें क्यों कर रहे हो। और इसके उपदेश में फिर अर्जुन कहते हैं भगवान को इसके बाद में कि हे भगवान, मैं आपको अभी तक अपने आपको दोस्त के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, एक मित्र के रूप में, आप मेरे सखा हैं, लेकिन अभी इसके इस क्षण के बाद मैं आपका सखा नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका दास हूँ, शिष्यस्ते हम स्यादि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य बनकर आपके चरणों में शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे आप स्वीकार कीजिए, मेरे गुरु बनिए, और ये दोस्ती का नाता छोड़कर अब मुझे आप उपदेश कीजिए, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं, गतासु न गताशुमश्च नानु शोचन्ति पंडितः, कि तुम तो बड़े पंडित की तरह बात कर रहे हो, शास्त्र को, शास्त्र के जो संदर्भ है वो दे रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो शास्त्र के अनुसार, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि सत्य क्या है, और जिसके लिए रोना नहीं चाहिए उसके लिए रो रहे हो। गता अगता सुना, जो जीवित है वो जो मरे हुए हैं इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा होते हुए भी तुम शोक कर रहे हो, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये अज्ञान की बात है। और ऐसा करते हुए भगवान अपना स्पीच जो है आरंभ करते हैं और पूरी भगवद गीता उसको सुनाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो जो युद्ध की युद्ध से प्रावृत्त हो चुका था अर्जुन, उसको भगवान धर्म के ज्ञान देते हैं, उसको सत्य के स्तर पर लाते हैं, समझाते हैं कि अपनी भावना, अपनी इमोशंस, अपनी खुद की विचार धारणा, ये सब को त्याग करते हुए भगवान की विचार धारणा को स्वीकार करना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जीवन का सत्य जो है हमेशा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कड़वा लगता है बहुत। सत्य जो है हमेशा कठोर होता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए शक्ति चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अधिष्ठान होना चाहिए। इसलिए भगवान गुरु बनकर उनको उपदेश करते हैं और कहते हैं कि जब धर्म की बात आती है तो सारे रिश्ते नाते, सारी भावनाएं, सारे हमारे नीति सब फेल हो जाती है और केवल सत्य के सर पर चलने वाला व्यक्ति विजय होता है। तो इसलिए भगवान उसको सत्य का ज्ञान देते हैं और वो एंड में क्या उसका परिणाम होता है, नष्ट मोहो स्मृतिर लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। वही व्यक्ति जो है अर्जुन, वो युद्ध के लिए मना कर रहा है, हाँ कुछ सुना नहीं कोई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, नींद आ रहे तो खड़े हो जाना। हाँ तो अगर जो व्यक्ति स्वयं पहले युद्ध करने को मना कर रहा था, शस्त्र नीचे डालकर बोल रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी मति भ्रष्ट हो चुकी है, वो व्यक्ति शांत चित्त होकर कह रहा है मेरा मोह जो है अभी नष्ट हो चुका है, मेरा मुझे पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अभी करिष्ये वचनम तव, आपके जो वचन होंगे, जो आदेश होगा वैसे मैं पालन करूंगा। तो गीता अगर हमको समझनी है, इसका क्या प्रमाण है कि गीता को पढ़ने के बाद में आपके मन में, हमारे मन में ऐसा विचार आना चाहिए कि अब मैं जो कृष्ण कहेंगे वो करूंगा, अभी मेरा जीवन कृष्ण के आदेश के अनुसार चलेगा, अब मैं उनका सेवक बनूंगा, मैं उनका दास बनूंगा, उनकी सेवा करूंगा और जो वो कहेंगे, जो उनका आदेश उन्होंने दिया है भगवद गीता में, अन्य शास्त्रों में, उसी को पालन करते हुए मेरा जीवन बिताऊंगा। अगर आपके मन में ऐसी विचारधारणा आती है, इसका अर्थ यह है कि आपको गीता समझ में आई है, क्योंकि अर्जुन को यही भावना गीता सुनने के बाद में आई थी और अर्जुन हमारा प्रमाण है कि वो गीता समझ चुके थे। उसके बाद में उसके जीवन में युद्ध में कई ऐसे प्रसंग आए जो उसको मन में जज नहीं रहे थे कैसा करना चाहिए, लेकिन केवल भगवान के आदेश के अनुसार उसको नापसंद होते हुए भी अर्जुन ने उन चीज़ों को किया जो भगवान की इच्छा थी। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं आपके जैसा मन की बात पूरा करूंगा, लेकिन आप एक कुछ एक बात बताएंगे उसके बाद बोले ये सही नहीं है, मुझे अच्छा लगता नहीं है, आई डोंट थिंक आई विल फॉलो दिस, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, मेरी बुद्धि को जचे नहीं जचे, मेरे ज्ञान के अनुसार वो अच्छा हो या ना हो, ये पुण्य का कार्य हो या पाप का कार्य हो, जो भी कुछ हो, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही धर्म होता है, वो नीति समाज राजकारण सबसे ऊपर होता है, रिश्ते नाते परिवार भावना सबके ऊपर होता है भगवान के वचन, भगवान का आदेश। तो आज वो परम पवित्र दिवस है मनुष्य जीवन में, अगर हमने प्राप्त किया है मनुष्य जीवन और अगर भगवान के संदेश को समझने का प्रयास नहीं किया हमने, हाँ चाहे वो बाइबल में दिया हो, चाहे मैं कुरान से दिया हो, चाहे वो भगवद गीता में दिया हो, भगवान के द्वारा आया हुआ संदेश अगर हमने इस जीवन में समझने का प्रयास नहीं किया है तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। और भारत में जन्म लेने के बाद में अगर हमने भगवान के आदेश को, संदेश को, सूचना को समझने का प्रयास नहीं किया है तो हमारा भारत का जन्म जो है उस पर धिक्कार है, क्योंकि भारत की भूमि जो है यहाँ पर बड़े बड़े संतों ने अवतार लिया है, स्वयं भगवान के अनेक अवतारों ने यहाँ पर जन्म लिया है। ये पावन भूमि है, पवित्र भूमि है, यहाँ पर दिव्य संदेश, दिव्य उपदेश, भगवान का मैसेज यहाँ पर प्राप्त है। हाँ विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं आध्यात्मिक शास्त्र समझने के लिए और उसको जीवन में उतारने के लिए। हिमालय में रहते हैं, पवित्र स्थलों में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं इस शास्त्र को समझने के लिए। तो भगवान क्या कहना क्या चाहते हैं हमको, क्या उन्हें हमारे लिए मैसेज क्या है उनका, जो भूले भटके बच्चे के लिए पिताजी का संदेश क्या है, वही गीता का उपदेश है। उसी उपदेश को अलग 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 स्थिति पर, अलग अलग स्थान के अनुसार, अलग अलग संतों ने अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में अलग रूप से प्रकट किया है। जिसको हम कुरान बाइबल ग्रंथ साहिब टौरा ऐसे अलग जो ग्रंथ हैं उसको पाते हैं। संदेश एक ही है, वो है प्रेम का, सेवा का, भगवत शरण का संदेश है। इसलिए आप सबको हम विनती करते हैं, जिनके पास भगवत गीता नहीं है वो आप ले लो, खरीद कर लो उसको, मराठी हिंदी गुजराती इंग्लिश जो भी आपको समझे, और कन्नड़ मलयालम तेलुगु हर भाषा में उपलब्ध है। प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के जीवन में उन्होंने ये 55 भाषाओं में उसका अनुवाद किया था उनके शिष्यों द्वारा, आज वो 80 से अधिक भाषा में उपलब्ध है। क्यों किया है सब उन्होंने, इतना कष्ट क्यों उठाया, क्योंकि ये संदेश जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सब धर्म के लोग इस गीता के संदेश को प्रमाण मानते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसके अंदर। सब धर्म के लोग जो पंडित हैं वो जानते हैं कि भगवद गीता जो है वो श्रेष्ठ प्रमाणिक ज्ञान है, इसलिए हम सबको उसका अभ्यास करना चाहिए। आप बोलेंगे अरे मैंने किताब तो लिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है उसका, तो क्या कहना चाहते हैं भगवान यहाँ पर, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, भगवान का मजेदार्थ क्या है, उनके क्या मंतव्य है, ये साधु लोग समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से सारा भगवद गीता जो है इतना मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, गहन लगता है, वो बहुत आसान हो गया है। और इस महीने में गीता जयंती के उपलक्ष्य में पूरे विश्व भर में करोड़ों और अरबों भगवद गीता का वितरण होता है, ट्रेन में, रस्ते में, मार्ग गार्डन में, ऑफिस में, घर में, मैदान में, सब जगह पर भगवान के भक्त लोग जो हैं बड़ी करुणा से, रेलवे स्टेशन पर और बस पार्टी में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि लोगों तक ये भगवद गीता का संदेश जो है वो पहुँचे। नहीं तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या लाभ है, टीवी देखने के लिए और मैगजीन पढ़ने के लिए, स्टारडस्ट और ये मनोहर कहानियाँ और अद्भुत कहानियाँ पढ़ने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, वो तो कुत्ते बिल्ली भी ऐसे जीवन जीते हैं, इंद्रिय भोग के जीवन। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो भगवान की बारे में जानकारी करने के लिए किया है। इसलिए आप हमको सबको विनती करते हैं कि आप आज के दिन उपवास का दिन है, भगवद गीता का अगर नहीं है तो ले लीजिए, और है तो उसको खोलिए और कुछ ना कुछ श्लोक जो है उसको जरूर आज पढ़िए आप और समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो अभी हम आज की कथा को यहाँ पर आरंभ करते हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान, परम पुरुषोत्तम, इनकी लीला अगाध है। प्रभु रामचंद्र भी उनके अवतार हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जब आते हैं तो एक मर्यादा के अंदर रहकर लीला करते हैं, एक श्रेष्ठ पति, एक आदरपूर्वक मतलब आदर्श पति, पुत्र, राजा, बेटा, सब प्रकार के जितने नाते रिश्ते पोजिशन है हमारी, जितने हम रोल अदा करते हैं जीवन में, वो सभी को मर्यादा में वो संपन्न करते हैं और हमको कैसे आदर्श व्यवहार करना चाहिए वो सिखाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो इन मर्यादाओं के आगे जाकर अपनी लीलाओं को करते हैं, बहुत बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। हाँ, मैं और अभी अंजारकर हम लोग वृंदावन में गए थे, बरसाने में गए थे, और बरसाना आई कैंप जो हमारा है उसकी यात्रा के लिए जगह तय करने के लिए गए थे, तो हम लोग वहाँ पर काम्यवन नाम की जगह में गए, और वो भगवान के जितने 12 वन जो है, 108 वन में से भगवान को 12 वन अति प्रिय, उसमें पांचवा वन जो है वो काम्यवन है। बहुत विस्तारपूर्वक, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है जहाँ पर देवता भी आने को ललायत रहते हैं, और उस काम्यवन को ऐसा वरदान है कि जैसे ही काम्यवन में हम प्रवेश करते हैं हमारी सारी कामनाएं वहाँ पूर्ण हो जाती हैं केवल प्रवेश करने से, और बड़ी अद्भुत अद्भुत जगह है वहाँ पर, और कुछ कुछ विशेष ऐसे जगह है जैसे भगवान जन्म होने के पहले बहुत साल तक नंद बाबा और यशोदा मैया को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, ऐसे कहते हैं कि नंद बाबा की उम्र 85 साल हो गई थी, 85 ईयर्स, फिर भी उनको पुत्र नहीं था। तो पुत्र की अभिलाषा से वो नंदगांव को छोड़कर गोकुल में गए, और गोकुल में जाकर उन्होंने अपना नगरी बसाया जमुना किनारे, क्योंकि जमुना बहुत पवित्र मानी गई है, जमुना के सहारे रहने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है, और साथ साथ उन्होंने मंदिर भी मांगी थी, जब हमको पुत्र प्राप्ति होगी तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, और चार धाम कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर हर की पौड़ी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऐसे बहुत सारे मानसरोवर से बहुत हिमालय के अंदर बहुत दिव्य दिव्य स्थान है, उनकी यात्रा करेंगे। तो यथावकाश जब भगवान का जन्म होता है, भगवान थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो नंद बाबा बोलते हैं अरे हमारी मन्नत मांगी थी, हम उसको पूरा करने जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ आप क्यों जाते हो उनके पास, मैं सबको उनको यहीं बुला रहा हूँ। ऐसे होता है कभी आपको जाना है, समझ दादर जाना है, दादर को जाते हो दादर को यहीं बुलाता हूँ, ऐसे होता है कभी नहीं होता है ऐसे। आपको मुझे घूमने जाना है माथेरान को, ये सफ़र करने का बोर हो रहा है बहुत, माथेरान को इधर लेके आओ, उधर माथेरान में जाके हम लोग एन्जॉयमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यही भगवान की अद्भुत बात है। हाँ जैसे हम लोग अभी काम की जगह पर आए हैं भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, हाँ कितने लोग आए यहाँ पर, हर एक 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 घर में रहते हैं ना आप लोग, सब लोग सबका एक छोटा मोटा कोई ना हो घर तो है। आप लोग अपना घर को इधर लेके आते हो क्या साथ में, नहीं आते हो, घर तो वहीं रहता है, आप आते हो वापस जाते हो। लेकिन भगवान जब आते हैं गौलोक वृंदावन से तो अपना घर भी साथ में लेके आते हैं, मतलब घर के बाहर कभी निकलते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जाते हैं घर के साथ ही जाते हैं। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो साक्षात अपना गौलोक धाम जो है उसको पृथ्वी पर उतारते हैं पूरा, उसको कहते हैं भौम वृंदावन, भूमि पर प्रकट हुआ वृंदावन को कहते हैं भौम वृंदावन, और उसमें भगवान रहते हैं और लीला करते हैं, वहाँ की कुछ कुछ लीलाएँ जो है यहाँ प्रकट करते हैं। तो वैसे जैसे माता पिता चार धाम की यात्रा करने का विनती करते हैं तो वो अपने मन से सब धामों को बुलाते हैं, प्रकट करते हैं यहाँ पर। तो काम्यवन के अंदर बद्रीनाथ को उन्होंने प्रकट किया है, केदारनाथ को प्रकट किया है, और गंगोत्री जमुनोत्री को प्रकट किया है, हर की पैड़ी को प्रकट किया है, और फिर उन्होंने सभी ग्वाल बालों ने नंद बाबा ने उसमें स्नान किया है, गंगोत्री में जमुनोत्री में हर की पैड़ी में, और सब दिव्यो दर्शन किया है। अभी इसमें थोड़ा अंतर कैसा है, समझो आप लोग बद्रीनाथ केदारनाथ में जाएंगे, यहाँ से आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा 24 घंटा, तो पहले 30 घंटा आपको लगेगा हरिद्वार पहुँचने के लिए, वहाँ से 28 किलोमीटर ऋषिकेश जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको 24 घंटा बस की यात्रा करनी पड़ेगी तब आप बद्रीनाथ पहुँचोगे, ढाई दिन के बाद, वो भी बिना रुकावट के आएंगे, तो कुछ हॉल्ट लिया रह गए तो फिर 3 दिन लगेंगे आपको जाने के लिए केवल पहुँचने के लिए, फिर वहाँ से 17 घंटा और केदारनाथ, वहाँ से आगे 6 घंटा गंगोत्री, फिर जमुनोत्री, ऐसा बहुत दूर 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 स्थान है, और सब स्थान बर्फ में है, कंप्लीट आइस में रहते हैं, और एक एक पहाड़ की चोटी 14,000 फीट 20,000 फीट ऐसे रहती है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर, हवा में ऑक्सीजन कम होता है ऊँचाई होने के कारण, सांस फूलती है बहुत, यहाँ पर जितने चुस्त रहेंगे उतने चुस्त वहाँ पर नहीं रहेंगे, जल्दी थक जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलता है वहाँ पर, बहुत ठंड रहती है, ऐसा बहुत सारा कष्ट रहता है। इसलिए पुराने ज़माने में जब आदि बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम लोग यात्रा करते थे वहाँ पर, तो बस नहीं था उस समय, बैलगाड़ी जाना नहीं चाहिए उस समय, पैदल यात्रा करते थे, तो सब लोग सब परिवार के लोगों की विदाई लेकर जाते थे, पता नहीं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कोई शेर खा लेगा, कोई पहाड़ से गिर जाएगा, बर्फ़ में ठंड होकर मर जाएगा, नोबडी नोज। इसलिए चार धाम की यात्रा मतलब फाइनल, सब कर्तव्य निभाने के बाद में चार धाम की यात्रा करते थे, इतना कष्ट है उसके अंदर बहुत। मैंने याद है हमको, जब गए थे 87 में हम लोग, तो गंगोत्री जमुनोत्री को हम लोग 14 किलोमीटर चले थे, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, एकदम कठिन चढ़ाई, कई घंटे लगे थे, 8-9 घंटा खाली चढ़ते थे, वो चढ़ ही रहे थे खाली, कुछ लोग घोड़ी में बैठे थे, इतना मुश्किल काम होता है। लेकिन वो जो दिव्य धाम है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, उसको जब भगवान ने काम्यवन में प्रकट किया तो बहुत छोटे से कद का प्रकट किया, छोटे छोटे साइज का, जिससे आपको वो कष्ट जो है वो ना होते हुए बड़ी आसानी से आप उस पर चढ़ सकते हो, दंडवत प्रणाम पूजा पाठ सब कर सकते हो, और वहाँ जाने पर जितना लाभ है उससे कई गुना अधिक लाभ आपको छोटे से यहाँ पर पर्वत पर चढ़ के आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा वरदान भी दिया है, क्योंकि ये सारे धाम उन्होंने दिव्य ब्रजभूमि के अंदर प्रकट किए। दिव्य ब्रजभूमि जो है उसका परिणाम अलग होता है, क्योंकि वो भगवान का धाम है, भगवान का शरीर है, उसके अंदर जब इस धामों को इन तीर्थों को प्रकट करते हैं तो उनका जो लाभ है वो वहाँ जाने से कई गुना अधिक यहाँ प्रकट होता है। चल देखेंगे केदारनाथ की चोटी जो है, हम लोग कितनी चढ़ी थी उधर, 326 है ना, वो चढ़ के 15 मिनट में पहुँच गए हम लोग पहाड़ की चोटी पर एकदम, और कैसा दृश्य है वहाँ पर, एक बड़े पत्थर पत्थर के अंदर नंदी बना हुआ है अपने आप ही, एकदम बड़ा पत्थर से बना हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा चित्रपट आपको। और फिर जो नाग होता है ना उस शीश के, शिव जी के लिंग पे होता है ना वो नाग पत्थर में प्रकट हो गया है, और उसके नीचे शिव जी का लिंग है केदारनाथ जी, नीचे पार्वती कुंड है, गौरी कुंड, जहाँ पर पार्वती जी ने तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, वो भी वहाँ पर प्रकट है, वो केदारनाथ का है। आदि बद्री में जाएंगे तो आदि बद्री में आप वहाँ जब भी गए होंगे, आप से कोई लोग गए होंगे बद्रीनाथ पे, तो बहुत दिव्य पहाड़, दिव्य दोनों तरफ पहाड़ है, एक नर नारायण नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है, मतलब जो अर्जुन और कृष्ण है वही नारायण नर बनकर प्रकट हुए वहाँ पर पर्वत के रूप में। नर जो पर्वत है वो अर्जुन का अवतार है, और जो नारायण पर्वत है वो कृष्ण का अवतार है, और दोनों तपस्वी बनकर वहाँ पर तपस्या करने के लिए प्रकट हुए थे। जैसे भगवान जगन्नाथपुर में भोजन करते हैं, भगवान रंगनाथ जी में शयन करते हैं, हाँ द्वारका में राज चलाते हैं, और बद्री केदार में क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और वृंदावन में खेलते हैं। तो वही भगवान जो है वो नर पर्वत बनकर, नारायण पर्वत बनकर वहाँ पर तपस्या करते हैं, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका जैसे सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा गया, तपस्या से डरकर देवताओं ने भेजा उनको, तो नर और नारायण के शरीर से अनंत अप्सराएं उत्पन्न हुई जो उनसे भी हजार गुना सुंदर थी, और देवताओं के इस प्रयत्न को उन्होंने परास्त कर दिया, केवल कुछ भी न करते हुए उन्होंने कुछ तपस्या छोड़कर भाग के नहीं आए वो परास्त करने के लिए, तपस्या में उनको परास्त कर दिया उन्होंने। ऐसे दिव्य भगवान का वहाँ पर स्वरूप है, वो दोनों पहाड़ जो इतने दिव्य हैं वहाँ पर, बीच में अलकनंदा नदी बहती है जो बर्फ के समान ठंडी होती है, लेकिन केवल बह रही है इसलिए वो द्रव रूप प्रवाह मान रहती है, नहीं तो फिर वो रुक जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, इतना ठंड होता है वहाँ पर। तो वैसा ही दृश्य, क्योंकि मैंने वहाँ दर्शन किया है बद्री केदार में, तो वैसा ही दृश्य वहाँ पर आदि बद्री में उपलब्ध है। बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ है, नर नारायण दोनों दो तरफ है, बीच में दो नदियाँ बह रही हैं, अभी जो जल समाप्त हो गया उनका उनका मिलाप भी वहाँ पर है। तो इस तरह से, और अभी कुछ स्थान अभी कालयुग कलयुग के प्रभाव से लुप्त भी हो गए, जैसे कि कई कुंडों का वहाँ पर वर्णन है, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे दृष्टि के लिए कई चीज़ें उपलब्ध हैं, आप जाएंगे दर्शन कर सकते हैं। तो आदि बद्री है, फिर भगवान जब द्वारका से लौट के आए उनको मिलने के लिए, तो गोपियों ने उनको कहा कि आपने द्वारका में इतना समय बिताया, हमको द्वारका का दर्शन कराओ। तो भगवान ने कहा कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही प्रकट करता हूँ। तो कोशी नाम की जगह है, नंदगांव से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भगवान ने जो रत्नाकर यानी कि समुद्र है द्वारका का, उसको एक बड़े विशाल कुंड के रूप में प्रकट किया है। और भगवान द्वारका में जब थे तो गोपियों की याद करके रोते थे, तो उनके आँखों से जो अश्रु निकले उससे नदी बनी, उसका नाम है गोमती नदी, और वो गोमती नदी द्वारका में उपलब्ध है, वहाँ बहती है, तो उसको भगवान ने यहाँ पर गोमती कुंड के रूप में प्रकट किया है कोशी में, और कोशी को द्वारका माना गया है क्योंकि कोशी में भगवान ने द्वारका को प्रकट किया है, और साथ साथ में कोशी में नंद महाराज का कोष भी था, मतलब ट्रेजरी कोषागार वहाँ पर उपस्थित था। तो इस तरह से जितने भी तीर्थ और धाम है सब भगवान ने प्रकट किया। अभी आप बोलेंगे कि क्या क्या प्रकट है वहाँ पर, तो और भी एक अद्भुत चीज़ वहाँ प्रकट है, रामेश्वर धाम प्रकट है, और रामेश्वर से जो सेतु बंध निकला है ना लंका तक, वो भी भगवान ने वहाँ प्रकट किया है, और लंका के सेतु बंध के एंड में लंका धाम भी उन्होंने प्रकट किया है। लंका भी बहुत पवित्र स्थान है, तो वहाँ पर भगवान ने लंका को भी प्रकट किया। तो आप देखेंगे अरे ये तो साउथ इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, श्रीलंका सेतु बंध और रामेश्वर, ये सारे चीज़ ब्रज में उपलब्ध है। एक बार नंद बाबा को कथा सुन रहे थे गंगा जी का, और गंगा जी कथा सुनते सुनते उन्होंने सुना कि अरे एक बार गरुड़ जो है वो सांप को, मैं संक्षेप बता रहा हूँ आपको, सांप को पकड़ा उन्होंने अपने खाने के लिए, और सांप को पकड़ के उड़ रहे थे तो गंगा जी के पास से उड़ रहे थे, तो गंगा जी के नीचे झुक गए ऐसे वो, तो सांप जो हाथ में तो ऐसा होता ना ऐसा एक जगह पकड़ा था, बाकी दो एंड ऐसे लटक रहे थे उसके, तो उसकी पूँछ जो है वो गंगा जी के पानी को स्पर्श कर गई, और जैसे ही स्पर्श हुआ तो सांप का रूपांतर जो है उसकी मुक्ति हो गई, और वो चतुर्भुज विष्णु दूत के रूप में शरीर का उसका रूपांतर हो गया, मतलब नीले रंग का शरीर, चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म प्रकट हो गए उसके हाथ में, मुकुट प्रकट हो गया, और सांप के बदले में उसके हाथ में वो विष्णु दूत आ गया। स्पर्श होते ही गंगा जी का, तो तुरंत गरुड़ ने उनको पीठ पर बिठाया और वैकुंठ ले गए उसको। तो जैसे ही ये कथा सुनी नंद महाराज ने तो खड़े हो गए उठकर, बोले मुझे अब भी जाना है हमें गंगा जी स्नान करने के लिए। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, अरे तो ब्रज को छोड़ के जाएंगे गंगा जी में, हरिद्वार ऋषिकेश में। बोले कोई नहीं जाएगा गंगा जी में स्नान, मैं गंगा जी को यहीं बुलाता हूँ। तो भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर, आतुर उत्सुक ईगर ब्रजवासी, उनको लेकर वो गोवर्धन के बीच में चले गए और अपने मन से उन्होंने गंगा जी को आह्वान किया। तो उनके सामने गंगा देवी प्रकट हो गई मगरमच्छ पे बैठकर हाथ जोड़ते हुए, क्या मेरे लिए आज्ञा है? बोलते आपका यहाँ जल सब भर दो और बड़ा एक कुंड बना दो। तो सबके आंखों के सामने गंगा देवी ने जमुना जी गोवर्धन के बीच में बड़ा जलाशय उत्पन्न किया, बहुत दिव्य, जो उस समय समुद्र के समान विशाल था। वो आज भी ब्रज में जाएंगे तो सबसे बड़ा जो कुंड है वो मानसिक गंगा है। तो मानसिक गंगा क्यों कहा गया उसको? क्योंकि भगवान के मन से उत्पन्न हुई, इसलिए उसको मानसिक गंगा कहा गया। और भगवान ने उसमें फिर सभी नंद बाबा यशोदा मैया सभी ब्रजवासियों ने उसमें स्नान किया, उनकी इच्छा थी स्नान करने की। तो भगवान ने क्या बताया इस सबसे? मैंने आपको कई स्थानों का वर्णन किया यहाँ पर, अभी और भी बहुत स्थान है। गया कुंड है, जहाँ पर गया में जाते हैं ना हम लोग, मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर पिताजियों का श्राद्ध करने के लिए हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से श्राद्ध करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो उन्होंने यहाँ पर भी गया कुंड प्रकट किया। पहले मैं मानसिक गंगा कथा पूरी करता हूँ। तो ये मानसिक गंगा भगवान ने प्रकट किया, उसके बाद में उसी मानसिक गंगा में गंगा जी के जल में भगवान ने नौका विहार किया। गोपियों के संग उन्होंने बोट में बैठकर अनंत काल तक आनंद लिया नौका विहार का, बोटिंग का। फिर गया कुंड प्रसन्न प्रकट किया, गया कुंड में जाकर हम श्राद्ध करते हैं। तो ऐसे कहा गया कि वो गया कुंड जो उन्होंने गया जो है वो गया कुंड के रूप में उन्होंने ब्रज में प्रकट किया है। वहां पर केवल पहुंचने से और केवल आचमन मतलब हाथ से जल पीने से न केवल एक पितर का, लेकिन कितने हमारे पितर हैं, हमारी माता है, हमारे पिता है, जो गुजरे हुए हैं सब लोग, वो सबका उद्धार हो जाता है। केवल हमको वहाँ बैठ के उनका स्मरण करना है बस, कोई श्राद्धवाद की विधि करने की जरूरत नहीं है, वहाँ बैठ के उनका स्मरण करके उनके नाम से जल पीना है बस। उतना करने से उनका आगे जाकर श्राद्ध करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। हमारे माता के साइड में जितने गुजरे हुए हैं, पिता के साइड में जितने गुजरे हुए हैं, उन सबका याद करके हम वहाँ पर आचमन करेंगे तो सबका उद्धार हो जाता है। ऐसा ये दिव्य धाम है। हाँ, तो अभी हम वो आपको स्लाइड दिखाएंगे। नितिन, हरे कृष्णा, प्लीज़ कम।